Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal.
नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन. पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
धन्यवाद अमित.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों में, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन.
इंडियाज जीडीपी ग्रोज एट 7.4% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25. ग्रोथ इन द लास्ट फिस्कल ईयर एस्टिमेटेड एट 6.5%. द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंड down amid weak global cues. Sensex slips 182 points. Nifty closes below 24,800. And the US appeals court reinstates President Donald Trump's sweeping tariffs. Most Asian markets end in the negative territory. European indices trade with gains.
आर्थिक सुर्खियों में, चौथी तिमाही में देश की आर्थिक विकास दर 7.4% दर्ज. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विकास दर 6.5% रहने का अनुमान. वैश्विक कमजोरी से घरेलू शेयर सूचकांकों में गिरावट. सेंसेक्स 182 अंक लुढ़का. निफ्टी 24,800 से नीचे दर्ज हुआ. और अमरीकी अपील कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क लगाने के फैसले को बहाल किया. एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट, हालांकि यूरोपीय शेयर बाजारों में मजबूती का दौर.
In our top story, the country's real gross domestic product GDP is estimated to grow by 6.5% in the financial year 2024-25. In the last quarter of the financial year 2025, the real GDP has been estimated to grow by 7.4% according to the Ministry of Statistics and Program Implementation. Nominal GDP has witnessed a growth rate of 9.8% in the last fiscal. Construction sector was a major driver of the economy during the last financial year with the estimated growth of 9.4%. Public administration, defense and other services sector growth is estimated at 8.9% during the financial year 2024-25, while financial, real estate and professional services sector witnessed a growth of 7.2% in the same period. Meanwhile, primary sector has seen a 4.4% growth rate as compared to 2.7% in the previous financial year. During the fourth quarter of the financial year 2024-25, the sector clocked a growth of 5% as compared to 0.8% in the fourth quarter of the previous financial year. Private final consumption expenditure, PFCE, grew by 7.2% during the financial year 2024-25 as compared to 5.6% in the previous financial year. And the gross fixed capital formation recorded 7.1% growth during the same period. Puneet, right now we have the real GDP, which is estimated to grow at 6.5% in the financial year 2024-25. Real GDP is computed after taking into account inflation. So we don't have the nominal figures. We have the nominal figures from last year, which was 9.8%. And then we have the real GDP. This is for the benefit of our listeners who are tuned into Market Mantra. So how do you see growth right now in terms of manufacturing and services? We have construction figures, we have figures from public administration, real estate, professional services, etc. But how would you divide it between manufacturing, services, agriculture and tertiary sectors?
So Arjun, couple of things which are important in these in this data. First of all, I think the numbers that we have got, these numbers are slightly ahead of expectations because we had seen a kind of a slowdown in the first three quarters of the year. And then the fourth quarter numbers have really surprised with a very strong growth number. So which has brought the overall growth for GDP, the real GDP that you mentioned, to about 6.5%. The nominal GDP, which is actually the number, because if you look at the in rupee terms, that is about growth is about 9.8%. And if you look at the GDP number, there is approximately 3.3 lakh crore. That is the value addition which has taken place. And that is approximately $4 trillion. So this is the figure I'm trying to reach at. And I think probably this now puts India almost neck to neck with Japanese GDP. If we look at the nominal GDP, not the real GDP, the nominal GDP of the country is now comparable to that of Japanese GDP.
When you don't account for inflation.
When we don't account for inflation. So, of course, we have slightly higher inflation. Therefore, I'm saying that nominal GDP compares and not the real GDP. But irrespective of that, and we look at the breakup of this GDP, 55% of this GDP has actually come from the services sector. And approximately 45% has come from manufacturing, little bit from agriculture, little bit from other services. So clearly, I think the services sector is what is been driving growth. Other sector which has really come forward, I think, in the last quarter, if you look at the numbers, was the defense sector. If you look at the defense sector growth, that has been about 8.9% in the last quarter. So clearly, what is happening, if I look at these numbers, I can say that Atmanirbhar Bharat program of Government of India, that is really driving the GDP growth in this quarter, and I think going forward.
पुनीत, आपने बहुत अच्छी दो चीज़ें कही. अगर 55% का की हिस्सेदारी अगर सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर से आती है, तो क्या हम ये माने कि भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो बाकी क्षेत्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और इससे लगा हुआ ये कि हम सेवा क्षेत्र के माध्यम से रोजगार के बड़े मायने में रोजगार भी उत्पन्न कर रहे हैं?
बिल्कुल. देखिए, जो आंकड़े इसमें एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रही है, यानी अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और हमने देखा है कि सर्विसेज सेक्टर में जो है वो नंबर ज्यादा आया है. तो क्लियरली जो अगर भारत को बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग की भी हमें बहुत जरूरत है, उसमें भी हमें एक फोकस बहुत रखना है, और पीएलआई का हम डेटा देखें जो इसमें हमारे सामने है जी. तो वहां पर भी ग्रोथ आई है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ अभी भी सर्विसेज में आ रही है अगर आप देखें. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आंकड़ा लें और डिफेंस सेक्टर की हम बात करें, डिफेंस हालांकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग काफी बड़ा एक आंकड़ा है, वो करीब 9% ग्रोथ है. तो क्लियरली प्राइमरी सेक्टर जो आप कह सकते हैं मिनरल्स और माइनिंग और इससे रिलेटेड है, वहां पर 4.5% ग्रोथ है. तो हालांकि वो भी अच्छी एक नंबर है गिवन द करेंट चैलेंजेस. अगर हम पूरे देखिए, ये चौथे तिमाही के आंकड़े हैं, यानी जो लास्ट क्वार्टर था मार्च एंडिंग का, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मार्च क्वार्टर में जो ग्लोबल लेवल पर काफी अनसर्टिनिटी थी, काफी प्रॉब्लम्स थी, काफी डाउट्स थे कि ये ग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और उसमें मुझे लगता है भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन.
अगर चौथी तिमाही में जो जीडीपी के आंकड़े हैं उन्होंने पूरे वर्ष के आंकड़े को एक बहुत बड़ा समर्थन दिया है, तो क्या ये माना जाए कि भारत में जो हर बार कहा जाता है, और एक विश्लेषक के तौर पे आप हमेशा से बहुत ज्यादा आशावान रहते हैं कि भारत का जो ग्रोथ इंजन है वो उसमें अभी भी अपार क्षमताएं हैं, और वो धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे निरंतर बढ़ रहा है. इसके साथ एक जो ये बात है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7.2%, इसमें भी बढ़त है. इसके अगर सरल शब्दों में माना जाए तो क्या इसके मायने हैं?
देखिए, इसका मायना खास तौर से है कि दो सेक्टर से कंजम्पशन आती है या खर्चा आता है इकोनॉमी में, एक गवर्नमेंट सेक्टर है और एक प्राइवेट सेक्टर है. तो हम अगर पिछले कुछ वर्षों जाएं तो वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा था 21-22 में पेंडेमिक के बाद, लेकिन इस वर्ष ऐसा लगता है कि सरकार ने अपना हाथ खींचा, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट हम कम करना चाह रहे थे, और जो प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने लीड दी, उन्होंने कहा कि आप आगे आइए, और प्राइवेट सेक्टर ने उस रोल को निभाया है. तो क्लियरली वो वहां पर हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर की जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा उसको बढ़ा. एक और उसमें खास आंकड़ा है जिसे हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन कहते हैं, GVA कहलाता है, जो GDP के से हम उसमें क्या उसमें हम ये रखते हैं जो हमारा GDP नंबर है, मान लीजिए 9.8% नॉमिनल GDP ग्रोथ है, तो हम टैक्सेस और गवर्नमेंट सब्सिडीज को हटा देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट टैक्सेस और जो सब्सिडीज है उसको हटा दें तो एक्चुअल ग्रोथ क्या हुई इकोनॉमी में. तो वो आंकड़ा भी हमारा 6.4% ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है वो 6.4%, हालांकि हल्का सा वो थोड़ा उम्मीद से कम है, पर वो भी 6.4% प्योर वैल्यूडेशन है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज.
ये आपने बात कही कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, कई बार ये माना जाता था कि सरकारी क्षेत्र ही अर्थव्यवस्था को पूरी एक दिशा प्रदान कर रहा है, अगर निजी क्षेत्र उससे कदम ताल करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, ये कितना स्वस्थ संकेत है पूरी अर्थव्यवस्था के लिए और एक भारत जैसे देश के लिए जो विकसित राष्ट्र बनने के सपने को सजो रखे रहा।
देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, बिना प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन के या उसकी मोमेंटम के ये लक्ष्य हम अचीव कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें तो देखिए सरकारी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट की एक सीमाएं हैं और उसका प्रोसेस है। निजी क्षेत्र यदि आगे बढ़ता है, पर्टिकुलरली सर्विसेज सेक्टर में, तो वहां पर हमें एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो क्लियरली प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें।
So clearly you're talking about the business cycle, because employment is linked to GDP growth, and the only way to increase employment is by ensuring that consumption by both government and the private sector is hand in hand. So clearly the planning is all about increasing private consumption as well. Let's move on to some more news now, this time from the stock market.
जी, घरेलू शेयर सूचकांकों में आज गिरावट का दौर रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.2% की गिरावट से 182 अंक गिरकर 81,451 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% के नुकसान से 83 अंक गिरकर 24,751 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिडकैप सूचकांक में 0.4% की गिरावट दर्ज हुई, जबकि बीएसई स्मॉल कैप सूचकांक 0.1% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा।
द बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस टुडे एंडेड विद मॉडेस्ट लॉसेस अमिड वीक ग्लोबल क्यूज एंड वेट डाउन द मेटल आईटी एंड ऑटो सेक्टर्स। द 30 शेयर इंडेक्स एट द बीएसई सेंसेक्स लॉस्ट 182 पॉइंट्स or 0.22% to close at 81,451. The NSE Nifty 50 slipped 83 points or 0.33% to settle at 24,751. The broader market indices at the BSE closed mixed. The mid-cap index slid almost 0.4%, while the small-cap index increased over 0.1%. In the Sensex pack, 24 out of the 30 companies ended down. In the top laggards, a Tech Mahindra slid over 1.7%, HCL Tech as well as Asian Paints both lost over 1.6%, and NTPC slipped almost 1.5%. Among the top gainers, Eternal surged over 4.5%, SBI Bank added almost 1.9%, and HDFC Bank advanced over 0.8%. In the sectoral indices at the BSE, 17 out of the 21 sectors edged low. In the top laggards, metals shed over 1.6%, commodities as well as focused IT both dropped 1.14% each, and utilities declined almost 1.1%. Among the top gainers, capital goods jumped over 0.6%, financial services as well as industrials both climbed 0.22% each, and BankEx added over 0.2%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,160 companies declined, shares of 1,826 companies advanced, while shares of 133 companies remained unchanged. At the NSE, 64 companies hit their 52-week high, while 23 companies hit their 52-week low.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 7 पैसे की गिरावट से 85.58 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स 99.5 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पुनीत, शेयर बाजार कि अगर आंकड़ों को हम विशेष तौर पे अगर देखें तो 81,500 के आसपास सेंसेक्स जो है एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया हुआ है, लेकिन निफ्टी ने भी तकरीबन वो 24,500 के स्तर को हमेशा बरकरार रखा हुआ है। गिरावट होती है, लेकिन अगर अंकों की बात देखें या अगर हम प्रतिशत की बात देखें तो बहुत मामूली है। ये क्या दर्शा रहा है कि निवेशकों का भरोसा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो वैल्यूएशंस को तराशने में लगे हुए हैं। मिड कैप में अगर नहीं होता तो कहीं स्मॉल कैप में तेजी का दौर आ जाता है, कि क्या दर्शा रहा है?
देखिए अमित, अगर इसको हम पूरे पर्सपेक्टिव में देखें पिछले 1.5 महीने, बिकॉज काफी बड़ा इवेंट्स रहे पिछले 1 महीने पर्टिकुलर, जो अगर मई के महीने की बात करें, इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का भी दौर रहा और काफी टेंशन भी रही, पर कुल मिलाकर अगर आप देखें तो बाजार जो है वही अपना एक लेवल पिछले 1 या 2 महीने से मेंटेन कर रहा है। कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी हमने नहीं देखी, और मुझे क्या लगता है कि बाजार अब एक प्रकार से संदेश दे रहा है कि मैं एक सॉलिड ग्राउंड्स पर हूँ। जो वैल्यूएशंस हैं, देखिए कुछ हद तक तो वैल्यूएशंस ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इन वैल्यूएशंस पर भी निवेशक पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स में हम लगातार इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, इवन FIIs का इस महीने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट रही है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि बाजार एक स्टेबल लॉन्ग टर्म ट्रेंड पर है, ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा है। थोड़ा उतार चढ़ाव हम डेफिनेटली देखेंगे आने वाले समय में, पर करीब करीब आप ये कह सकते हैं कि अब बाजार स्टेबलाइज हो गया अराउंड द करंट लेवल्स, और शायद आने वाले समय में जैसे जैसे इकोनॉमिक न्यूज आएगी, और देखिए जून में भी कुछ उठा पटक हो सकती है, बिकॉज अमेरिका में जो टैरिफ का अब दौर चलेगा वो 90 डेज का जो पीरियड था वो जुलाई में खत्म हो रहा है, तो वहां पर कुछ उठा पटक हो सकती है। पर मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट जो है वो काफी स्टेबल है, पर्टिकुलरली जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स आपने हमने पढ़े जीडीपी के, वो भी काफी सपोर्टिव है।
तो जुलाई में बहुत सारी और भी चीजें हैं, क्योंकि भारत में अगर देखेंगे तो पहली तिमाही के नतीजे भी कंपनी जगत के आएंगे, मानसून की अच्छी खबरें भी हमको मिलेंगी, अमेरिका में अगर टैरिफ का एक असर है वो उस पर कितना असर डालता हुआ नजर आएगा ये भी हमको देखना होगा।
अमित देखिए जो पहली तिमाही जो जून क्वार्टर के वैसे जो अभी नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, थोड़ा अनुमान आ रहे हैं, मुझे लगता है ये क्वार्टर थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, क्योंकि जो ट्रेड था सप्लाई चेन्स थी वो पूरी डिसरप्टेड थी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर सप्लाई चेन डिसरप्शन हैं और वहाँ पर थोड़ा प्रोडक्शन में असर आया है, तो मुझे लगता है कि ये क्वार्टर जो जून क्वार्टर होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए।
उसके बावजूद भी अगर बाजार शेयर बाजार की हम बात करें, चाहे निफ्टी है या सेंसेक्स के आंकड़ों को अगर हम देखें, तो 81,000 के ऊपर या 24,000 के ऊपर, ये कितना भरोसा जगाने में कामयाब हुआ है, ये निवेशकों का भरोसा अभी भी कितना बरकरार है? वैल्यूएशन की बात आपने करी, वैल्यूएशन निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा है, हालांकि वो अट्रैक्टिव तो करते हैं, अट्रैक्शन भी करते हैं, लेकिन इस मौके पे बाजार में सीधे तौर पे घुसना ये
देखिए बिल्कुल अमित, तो मैं ये कहूंगा कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर निवेश करें निवेशक ऐसा नहीं हो रहा, और ऐसा हम देख भी नहीं रहे, हम देख रहे हैं बड़ा एक स्लो एंड स्टेडी जिसे सिस्टमेटिक तरह के आप इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं चल रही है मार्केट में, कोई बहुत ज्यादा तेजी बहुत ज्यादा मंदी नहीं हो रही और वॉलिटिलिटी भी रिलेटिवली कम है, तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन का फेज है आने वाले कुछ महीनों तक।
Puneet, my final question is, FIIs for the net sellers today to the tune of 6,500 crore rupees, DIIs for the net buyers to the tune of 9,000 crore rupees. VIX India is relatively high, 16. It's not at the danger level of 20. What does next week hold for us?
So Arjun, my sense is that we're going to start a new series which actually started today, but for June series. Historically, June has been a month of stability. We haven't seen very big moves in June. That could be different this time because, of course, we have geopolitical situation which is very, very volatile. My own sense is that we will see that market strain still in narrow range, maybe a couple of hundred points for Nifty. But I think markets are in a fairly good place. We may not see very big moves, but probably, you know, short-term couple of hundred points on Nifty.
नफर डालने थे मुद्रा बाजार भंडार पर। 23 मई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान देश का विदेशी मुद्रा भंडार 6,90,00,000 करोड़ डॉलर बढ़कर 692,70,00,000 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां 4,50,00,000,00,000 करोड़ डॉलर बढ़कर 586,10,00,000,00,000 करोड़ डॉलर रहा। स्वर्ण भंडार 2,30,00,000,00,000 करोड़ डॉलर बढ़कर 83,58,00,000,00,000 डॉलर के स्तर पर रहा। विशेष निकासी अधिकार भी 8,10,00,000,00,000 डॉलर बढ़कर 18,57,00,000,00,000 करोड़ डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। नफर डालते हैं एशियाई बाजारों पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। अमरीकी कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर रोक लगाने के फैसले से को अमरीकी फेडरल अपील कोर्ट द्वारा स्थगित किए जाने से एशियाई बाजारों में गिरावट रही। जापान का निकेई 1.2%, हांगकांग का हैंगसेंग 1.2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% और सिंगापुर के स्ट्रेट साइम सूचकांक में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में भी लगभग 0.5% का नुकसान रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में मजबूती नजर आई। फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक 0.3% से 1% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
Puneet, does a weakening dollar help our economy? Because the dollar is the international reserve currency. Of course, there's the exchange rate as well. You want a favorable exchange rate. You want to be paying less rupees to buy a dollar. But in terms of our growth prospects, in terms of our purchasing power and the tariff policy of the US, does a weak dollar help us?
So what we have seen so far is that whenever dollar has weakened in last few weeks, it has helped FII flows into India.
99.5.
So 99.5 is the dollar index now, but it used to be 108, 110 just a couple of months back. And as it is retreated, we saw that the FIIs were started buying in India. So my guess is that right now, given the dynamics, I think it helps India with a weakening dollar.
Well, let's have a look at the US market now. US stocks ended higher on Thursday as shares in NVIDIA gained after its quarterly results, while investors assessed a late afternoon court ruling that reinstated President Donald Trump's tariffs. Both the S&P 500 as well as the NASDAQ composite closed 0.4% up each, and the Dow Jones Industrial Average added almost 0.3%. On the economic front, the U.S. economy shrank at the start of the year, marking its first drop in 3 years, restrained by weaker consumer spending. Revised gross domestic product data showed the economy contracted at an annualized rate of 0.2% in the first quarter, slightly less than the initial estimates of 0.3% decline, according to the second estimate from the Bureau of Economic Analysis. Consumer spending slowed from an initial estimate of 1.8% to 1.2%, while a spike in imports contributed to a record trade deficit. Meanwhile, the initial claims for state unemployment benefits rose 14,000 to a seasonally adjusted 240,000 for the week ended on 24th of May, as per the Labor Department report. Puneet, consumer spending has come down because of inflation concerns. But the primary question here is the tariffs are about to kick in. They will kick in. The court has now ruled that this is legally binding on the parties who have to pay the tariff in order to export to the U.S. How do you see the U.S. economy at this stage? Because the trade deficit has gone up. They have already, the net imports have gone up before the tariffs kick in. What's going to happen in the U.S. in terms of employment, in terms of the U.S. dollar, and in terms of the growth? Because they're already contracting for at least one quarter.
So, Arjun, so far, of course, the U.S. economy has weathered this storm pretty well. And you can guess that from the markets. But my sense is that the real impact of higher tariffs or supply chain disruptions, this will play into the economy over the next few months. So I think we'll need to wait to see how the markets and the economy reacts to it. But my guess is that it will slow down significantly, because there is a very large segment of industry which is not disrupted because of fears of tariffs. So the imports have stopped, or they've scaled back. Prices are definitely going to go higher. Inflation will be there. So, but this will all play out over the next few months, maybe 3, 4, 5 months. But my guess is that economy will slow down in U.S.
But there's a global order to things as well, and the U.S. economy has been at the top of this order with its protectionism and its tariff policy. How will that be readjusted, and how do you see India in the global space?
See, conceptually, this is for hundreds of years. It's just a concept of economy. If a country is at the highest GDP, it wants to maintain leadership in GDP, then usually it runs a trade deficit, because it wants to, if you have a reserve currency, you would like to export your currency to the world. How do you export a currency to the world? It's by importing goods. But now the new US administration is making this policy stand on its head. They don't want to export currency. So if you don't export dollars to the world, how do you maintain the reserve currency? So there are a lot of intellectual issues involved in this, but I think we're going to see a major disruption in global order, as you mentioned, over the next year or so.
घरेलू कुछ खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नई दिल्ली में आज इंडिया एआई मिशन मेक एआई फॉर इंडिया कार्यक्रम में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी कुछ लोगों तक सीमित न होकर हर व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा इसके लिए कंप्यूटर के जरिए सूचना प्रबंधन सेवाएं सब तक पहुंचना जरूरी है।
जब मिशन बनाया था तब 10,000 GPU का टारगेट लेके चले थे, लेकिन खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि पहले राउंड में करीब 18,000 GPUs एम्पैनल हुए और आज सेकंड राउंड में करीब करीब 16,000 GPUs एम्पैनल हुए, यानी 34,000 GPUs अपने देश के स्टार्टअप्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। 34,000 GPUs, अगर हम इसको मैग्नीट्यूड को समझने की कोई पैरामीटर देखें तो बड़ा सुपर कंप्यूटर जो होता है करीब 700-800 GPUs से एक सुपर कंप्यूटर बनता है। तो 34,000 GPUs अपने आप में एक बहुत बड़ी कंप्यूट फैसिलिटी है।
पुनीत, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक नया युग शुरुआत कर रहा है। तो अगर इस तरीके की तकनीकें भारत के लिए, भारत में विश्व के लिए अगर बनाई जाती हैं, तो ये कितना बड़ा रोजगार का अवसर अभी प्रदान करेगा, और अर्थव्यवस्था को भी कितना सहायक सिद्ध करेगा?
देखिए अमित, ये मुझे लगता है आने वाले समय में के लिए क्रिटिकल है कि हम अपनी ही टेक्नोलॉजी एआई में डेवलप करें, अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करें और जो डेटा प्रोसेसिंग है वो इंडिया में ही हो, क्योंकि ये यदि बाहर रहेगी, आने वाले समय में आप देखिएगा जितना व्यापार है, इवन युद्ध की नीतियाँ हैं, ये सब एआई पे डिपेंडेंट है, उसी से लिंक्ड है। और इसलिए हमारी आत्मनिर्भरता मैन्युफैक्चरिंग की तो महत्वपूर्ण है, पर उससे ज़्यादा, और बल्कि कुछ फिलोसफर्स का तो मानना है कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है एआई, तो उसमें हमें पिछड़ना नहीं चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड और इंडिया ऑप्टल लिमिटेड के लिए मिनी रत्न श्रेणी एक का दर्जा स्वीकृत किया है। रक्षा मंत्री ने तीनों रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को 3 साल की छोटी सी अवधि में सरकारी संगठनों से लाभ कमाने वाली कॉरपोरेट संस्थाओं में बदलने के लिए बधाई दी। उन्होंने कंपनी का कारोबार बढ़ाने, स्वदेशीकरण को महत्व देने और मिनी रत्न का दर्जा दिए जाने के लिए आवश्यक अन्य प्रदर्शन मापदंडों को पूरा करने के लिए MIL, AVNL और IOL के प्रबंधन द्वारा की गई पहलों पर भी संतोष व्यक्त किया।
Your brief comment on the defense sector, seeing their order book, they are not profitable as well because of geopolitics. Brief comment.
So, Arjun, it's clear that India has now recently emerged as one of the major suppliers of defense equipment, not only to Indian army, but to global consumers. So clearly, I think it is a sector which can grow enormously, and it has enormous potential for us, for employment as well as for revenue.
In more news, Niti Aayog CEO BVR Subramaniam today called for transformation in manufacturing, education and energy sectors and building of industry infrastructure for the development of the country. Addressing the CII annual business summit, Mr. Subramaniam said, National Manufacturing Mission will be an overarching body which will have the power to give direction, control and ensure how things are done. He added that India has a young population and urge on finding ways to leverage benefits from the youth. Mr. Subramaniam also underlined the need for including women in the workforce. In more news, the government has notified guidelines for the prevention and regulation of illegal listing and sale of radio equipment, including walkie-talkies on e-commerce platforms 2025. These guidelines have been notified to curb the unauthorized sale of wireless devices that may pose a risk to consumer safety, mislead consumers regarding their legal position and interfere with critical communication networks, including those used by law enforcement and emergency services.
भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य व्यवसाय संचालकों से खाद्य लेबलिंग और प्रचार में 100% दावे न करने की सलाह दी है और इसको उपभोक्ताओं के लिए संभावित रूप से भ्रामक बताया है। प्राधिकरण ने कहा कि 100% शब्द का उपयोग चाहे अलग से हो या अन्य वर्णनकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से हो, ऐसा करना पूर्ण शुद्धता और श्रेष्ठता की गलत धारणा को दर्शाता है।
Moving on to news from the crude oil market, crude oil prices fell today. Brent crude was trading over 0.3% down at $63.91 per barrel. WTI crude was also trading over 0.7% down at $60.48 per barrel when reports last came in. Puneet, usually we discuss about what is going to be our fiscal spending in terms of oil imports. We talk about what the consumer is going to pay at the pump. But what's going to happen to oil producing countries if the negative estimate is $40 per barrel?
So, Arjun, what is happening is that I think the price war in the oil market is breaking out again, because OPEC Plus has now declared that they're going to increase oil output because USA is now trying to ramp up its production. So I think we are heading into a situation once again where oil prices will head lower going forward. It is good for us because we are the largest consumer, among the largest consumers in the world of oil. But I think for producing countries, right now they are heading into a price war. I don't know what will happen next year, but I think we are looking at significantly lower prices of oil in next 1 year.
नफर लाल जी, सराफा बाजार पे सराफा बाजार में सोना 0.3% की गिरावट से 95,700 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा, जबकि चांदी 0.2% की बढ़त से 98,280 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। जब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार में सोने का वायदा भाव 0.2% की गिरावट से 95,205 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। पुनीत, संक्षेप में सोना और चांदी, अगर डॉलर की बात करते तो डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 100 से नीचे है, वहां सोने की चमक लगातार करार है, बीच में बढ़त हुई लेकिन अभी वापस से वो 95,000 के आसपास है, अभी सोने में की चमक में कितनी चमक बाकी?
देखिए अमित, ऐसा लगता है, ऐसा अनुमान है हमारा कि डॉलर इंडेक्स जो है वो और नीचे जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट भी आ सकता है अमेरिका में और वहां पर ट्रेड डिसरप्शन चल रही है। अगर डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है तो गोल्ड डेफिनेटली बढ़ेगा। मैं उस कैंप में हूं कि गोल्ड के दाम यहां से हम एक तेजी जरूर देखेंगे।
और सोने और चांदी में कौन तेज रेस में भागेगा?
अभी तो देखिए लगता है कि सोना ज्यादा, उसकी डिमांड भी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो वो ज्यादा बेहतर लगता है।
पुनीत, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं तक इतनी सरल भाषा में सभी चर्चा को देने के लिए धन्यवाद
धन्यवाद
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर
इंडियाज जीडीपी ग्रोज एट 7.4% इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 ग्रोथ इन द लास्ट फिस्कल ईयर एस्टिमेटेड एट 6.5% बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंड डाउन अमिड वीक ग्लोबल क्यूज सेंसेक्स स्लिप्स 182 पॉइंट्स निफ्टी क्लोजेस बिलो 24,800 एंड यूएस अपील्स कोर्ट ग्रीन स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स स्वीपिंग टैरिफ्स Most Asian markets end in negative territory. European indices trade with gains. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.